नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने का आह्वान किया। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियानों में 550 से अधिक अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। इनमें मुख्य रूप से बांग्लादेश के नागरिक हैं। आकाशवाणी ने मुंबई में इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड 2025 में विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार जीते। रोम के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। विश्व के नेता और हजारों श्रद्धालु शामिल हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे।
आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आए।
प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के बारे में भी कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं।
कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं नौकरशाही, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं।
आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं।
रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15वें रोजगार मेले के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्तों को बधाई देते हुए कहा कि नव चयनित कर्मचारी भारत सरकार के उन पदों पर काम करेंगे जो देश के भविष्य को आकार देंगे।
आप जब आज सरकारी नौकरी के अंदर प्रवेश कर रहे हो, आप उस मोड़ पे खड़े हो जहां पर अनेक संभावनाएं हैं लेकिन अनेक चैलेंजेस हैं। आप जब रिटायरमेंट की एज तक पहुंचोगे तब आप भारत एक नया देखो, एक विकसित भारत देखो। और ये फाउंडेशन, ये सपना और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पहलगाम जैसे आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। श्री पुरी आज मोहाली में एमिटी यूनिवर्सिटी में 15वें रोजगार मेले में भाग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है अनलीश्ड बाय नेबरिंग स्टेट और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आप बयान देखिए जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट।
श्री पुरी ने देश के युवाओं को आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी से दो लाभार्थियों ने अपनी खुशी साझा की।
मेरा नाम उर्वशी है और मैं एज एन हवलदार सेलेक्ट हुई हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट, और आज मोदी जी ने हमें एक अच्छा नागरिक और अपनी ड्यूटी को अच्छे से सर्व करने का लेसन दिया और एक स्लोगन दिया, नागरिक देवो भव, जिस पर हम पूर्ण रूप से काम करेंगे।
मांशु मेरा नाम है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं प्रोफेशनली ऑफिसर सिलेक्ट हुआ हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं आज बहुत खुश हूँ।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात पर जोर दिया है कि देश भर में महिलाएं सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। आज नई दिल्ली में रोजगार मेले के 15वें चरण के तहत नियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी पहल के तहत 15,000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन तकनीक से लैस किया गया है।
हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले और आर्थिक स्वावलंबन के साथ वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ी हैं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं और उन 10 करोड़ में से 1 करोड़ महिलाएं जो लखपति दीदी बनी है।
पश्चिम बंगाल में शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार ने नव नियुक्तों को 25 नियुक्ति पत्र सौंपे। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पटना में रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। परिषद के सदस्यों ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है और इसके सभी रूपों का मुकाबला किया जाना चाहिए। परिषद ने पहलगाम हमले के अपराधियों, समर्थकों और प्रायोजकों को सजा दिलाने का आह्वान किया। परिषद ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इस मामले में सहयोग का भी आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संगठन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्वीकार किया है कि देश ने 3 दशक तक आतंकवादी समूहों का समर्थन किया है। ब्रिटिश समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में जब उनसे इस्लामाबाद के आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करने और उनका समर्थन करने के इतिहास के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों की ओर से घृणित कार्य में शामिल था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की यह स्वीकारोक्ति जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आई है। जर्मनी के बर्लिन में भारतीय दूतावास ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों की स्मृति में कल एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में कल रात नियंत्रण रेखा के पास कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन किया गया। अकारण किए गए इस उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। घटना में भारत की ओर से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सेना स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए घाटी में तलाशी अभियान चला रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस आतंकी हमले की जांच कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा के लिए जम्मू के रियासी जिले के कटरा में स्थित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र अगले महीने के पहले सप्ताह से सक्रिय हो जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल इस संबंध में एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। केवल अधिकृत पिट्ठू और खच्चर वालों को अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जाएगी। गुजरात में आज अहमदाबाद और सूरत में चलाए गए अभियानों में 550 से अधिक अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे 450 से अधिक अप्रवासियों को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य रूप से बांग्लादेश के लोग शामिल हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि 457 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। सूरत में भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए वर्षों से शहर में रह रहे थे। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सिवाकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं। ये घटना तब हुई जब फैक्ट्री में केमिकल्स को मिलाया जा रहा था। फैक्ट्री में 200 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दिशा निर्देश और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 6 गुना की वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। रेडियो और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार समारोह को कल रात मुंबई में आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट।
आकाशवाणी को मिले शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी को रेडियो का सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 13 एपिसोड की श्रृंखला में विशेष रूप से महिलाओं के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियां दोहराई गई हैं। इस श्रृंखला का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक विशेष साक्षात्कार के साथ हुआ। इसे पिछले साल राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया था। समाचार सेवा प्रभाग के लोकप्रिय साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई। सर्वश्रेष्ठ लेट नाइट शो श्रेणी में छाया गीत को पुरस्कृत किया गया। उजाले उनकी यादों के को बेस्ट सेलिब्रिटी शो ऑन एयर का खिताब मिला और सफरकास्ट को बेस्ट ट्रेवल शो का पुरस्कार मिला। आकाशवाणी ने शॉर्ट फॉर्म ऑडियो कंटेंट में अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ अंतरालीय पुरस्कार भी जीता। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। डॉक्टर गौर ने ऑडियो उद्योग में क्रांति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी जनहित को बनाए रखते हुए उन्हें सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि आकाशवाणी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करता है। मुंबई से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार हो रहा है। इसमें विश्व के नेता, गणमान्य व्यक्ति और हजारों श्रद्धालु शामिल हैं। वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख को रोम में सेंट मैरी मेजर के बेसिलिका में दफनाया जा रहा है। पोप फ्रांसिस को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनालियो लुला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसिद्ध इतिहासकार और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ एमजीएस नारायणन का आज सुबह कोझिकोड में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने का आह्वान किया। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियानों में 550 से अधिक अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। इनमें मुख्य रूप से बांग्लादेश के नागरिक हैं। आकाशवाणी ने मुंबई में इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।